At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPerksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
नमस्कार, सतीश झा शो में आपका स्वागत है। आजकल बेरोजगारी की बात कुछ सबके सामने आ रही है, जोरों से आ रही है, और अब विपक्ष ने भी कुछ हिस्सा और उठाना शुरू कर दिए हैं। वो धर्म वाली बात तो नहीं कर पाते, लेकिन बेरोजगारी बात कर सकते हैं। तो रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी कुछ आंकड़े रखे हैं। 2 करोड़ बेरोजगार बढ़ गई है, 45 करोड़ लोग नौकरी ढूंढ भी नहीं रहे। एक देश में जहां 90 करोड़ लोग काम करने लायक हैं, यानी कि उस उम्र से हैं जिस उम्र से काम कर सकते हैं और उस उम्र तक जहां तक काम कर सकते हैं, ऐसे लोग 90 करोड़ हैं। अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है 90 करोड़। उसमें 45 करोड़ लोगों ने काम ढूंढना छोड़ दिया है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है। और अगर आप औपचारिक जो संगठित क्षेत्र है उस पर देखें, तो वहाँ दिख रहा है कि जो इस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो हर साल लोग आते हैं, उनकी संख्या कुछ कम हो गई है। जो ESIC जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की बात करते हैं हेल्थ के लिए, वहाँ भी संख्या कम हुई है। कहीं 3%, कहीं 0.5%, कहीं 1%, जितने भी सरकारी मानक सूचक हैं उन सब में कमी आई है। आबादी बढ़े और सारे सूचक नीचे जाए रोजगार के, तो ये कुछ सोचने की बात है। और अगर 45 करोड़ लोग इतने हताश हो जाए कि नौकरी करना छोड़ दें, उसकी आशा भी छोड़ दें, तो उससे जाहिर है कि गरीबी बढ़ेगी। हमारी जिस तरह की अभी जो कई सारे आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़ों की बहुत बड़ी परेशानी हो गई। पिछले 8 साल में सरकार ने आंकड़े अच्छे करने में, दिखाने में कि हम अच्छे हैं, हर चीज़ को एक अच्छा नया रंग देने की कोशिश में आंकड़ों के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया है। एक बार आप देख भी चुके हैं, और नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। 3 संस्थाएं हैं, भारत सरकार, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड। निर्भर करता है कहाँ किस व्यक्ति कैसा व्यक्ति बैठा है, किसका कैसा राजनीतिक या दार्शनिक रुझान है, वो सब लेके आंकड़े वही होते हैं और तरह तरह की बातें होती रहती हैं। अब 3 तरह के आंकड़े सामने आए हैं। पहले आपने सुना होगा कि 2004 से 2014 तक हमारे यहाँ गरीबी काफ़ी कम हो गई, करीब 27% कम हो गई। और फिर आपने सुना होगा कि पिछले 2014 से गरीबी काफ़ी बढ़ गई। अब 3 जो आंकड़े हैं, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से 25 से 45% तक गरीबी भी है, एक आंकड़ा ये कहता है। अगर आप IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है उसकी बात देखें, तो कहते हैं कि शायद जो बहुत ही एक्सट्रीम गरीबी जो है, बहुत भयावह गरीबी जो है, वो शायद 1% है। विश्व बैंक कहता है वो शायद 10% है। तो अब 1% हो, 10% हो, 25% हो, 45% हो, ये आपके आंकड़े हैं। तो इसका मतलब हो कि आंकड़े सही नहीं हैं, सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं, कोई कुछ एल्गोरिथम बनाता है, कोई कुछ नए मानक निकालता है, कोई कुछ सूचक के तरीके अलग तरह निकालता है, कोई रेखा ऊपर नीचे करता है। सब मिला के जो कई हमारे पास रेखाएं हैं, वो 1% एक्सट्रीम पॉवर्टी से, 10% एक्सट्रीम पॉवर्टी से, 25% पॉवर्टी। लेकिन अगर आप देखें कायदे से, ये जो गरीबी की रेखा की बात करते हैं प्रति व्यक्ति, वो $1.9 की बात करते हैं, यानी कि करीब मान लीजिए ₹140 रोजाना की बात करते हैं, यानी कि ₹4,000 महीने की बात करते हैं। ये हमारी गरीबी की रेखा ₹4,000 आसपास की है। अगर वो देखें तो हमारे पास 10% के आसपास लोग हैं, वहाँ से 25 तक। अगर उसकी उसको हम 3.3 पे ले आए, यानी कि करीब हो जाएगा आपका 250 रुपए दिन के, 7,000 रुपए पे। आप सोचो 7,000 रुपए में कौन क्या कर लेगा, 4,000 महीने में क्या कौन क्या कर लेगा, इसका आप एक अंदाज लगाइए आज की तारीख में, और फिर सोचिए कि क्या गरीबी की रेखा होनी चाहिए। लेकिन गरीबी की रेखा जो भी है, यह है कि हमारे यहाँ गरीबी बढ़ी है, 10% 25% जो भी है बढ़ी है। यूपीए के ज़माने में काफ़ी कम हो गई थी, उसकी वजह थी कि उन्होंने गरीबी की योजनाएं लागू की, गरीबी ख़त्म करने की योजना लागू की। पिछले 8 साल में ऐसी कोई योजना बनी नहीं है, और जो शुरू की थी यूपीए सरकार ने वो भी कुछ उनके साथ बहुत खिलवाड़ भी हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से इस सरकार ने क्या किया है, जितने भी कार्यक्रम थे वो एक अलग तरह के थे, एक अलग दृष्टिकोण से थे, उसमें गरीब कहीं दिखता नहीं था। बात समझ में आती भी है कि भाजपा बनियों की पार्टी है, उसे गरीब दिखते बहुत कम हैं, दिखते तभी हैं जब मजबूरी होती है। और कांग्रेस वो सबकी पार्टी थी, उसको गरीब दिखते तो थे कम से कम, और उनकी बात करते थे, उनको सोचते थे उनके बारे में। तो दोनों बहुत फ़र्क है वैचारिक, और किस तरह से वो देश चलाना चाहते हैं फ़र्क है। वाजपेयी जी तक चीज़ें एक हद तक ठीक थी, सोचने का तरीका काफ़ी परिपक्व सा था। और अब जब सिर्फ धर्म के नाम पे बात होती है, जब सिर्फ हम एक कोई छड़ी घुमा देते हैं इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो मुश्किलें अलग तरह की होती हैं। तो सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा है, मोटी मोटी बात यह है कि जान ली 2 करोड़ नौकरियाँ कम हो गई, 45 करोड़ लोग नौकरी ढूंढ भी नहीं रहे हैं, महिलाओं को ज़्यादा मुश्किल हुई है, उनके पास कुल 9% के पास नौकरी है। और अब जो एक सवाल खड़ा कर रही है सरकार कि उनकी शादी की उम्र 18 से 21 कर दो, हमेशा लेजिस्लेट करके व्यवस्था को ठीक करने की जो हमारी चाहत है वो इसलिए कि हम कुछ असली काम करना नहीं चाहते। हमने कानून बना दिया, कानून बनने से कभी चीज़ हल नहीं होती, उसे कानून बन जाता है, उसे किसी की मुश्किल पड़ती है लेकिन कुछ हल नहीं होता। अगर आप RTI कर दीजिए, ये सब खुद अधिकार दे दीजिए, एजुकेशन का, हेल्थ का, कुछ भी कुछ करिए मत, तो अधिकार दे दिया आपने लेकिन जिम्मेदारी किस पे सौंपी आपने। अगर आप जिम्मेदारी सौंपोगे नहीं और पूरा ना करने पर उस पर एक कोई पेनल्टी नहीं होगी, कोई काम ही नहीं करेगा। कश्मीर में आपने कहा, हमारे यहाँ नियम है छोटा सा कि अगर कोई असमय से विधानसभा भंग करनी पड़े या लोकसभा जो भी, तो वो चुनाव 6 महीने के अंदर होने चाहिए किसी भी तरह से। देखा, 3 साल होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, वह असमय से उसको भंग किया गया था, 6 महीने चुनाव होने चाहिए थे, क्या हुए क्या? नहीं, क्योंकि सरकार के पास कोई पेनल्टी नहीं है। सरकार किसी को जेल में डाल देती है, उस पर कोई पेनल्टी नहीं है, अगर उसने गलती से डाला तो सरकार कुछ भी कर सकती है। जब तक गलत काम करने पर हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे तब तक कोई कुछ भी करता रह सकता है। अभी आपने जहांगीरपुरी में देखा जो हुआ, अगर सरकारी कर्मचारियों पर एक पेनल्टी की बात होती तो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन जब कोई पेनल्टी नहीं है गलत काम करने की तो लोग गलत काम करते रहेंगे। तो खैर, तो वही स्थिति यहाँ भी है, हमारे रोजगार बढ़ाने में भी है। रोजगार एकाएक नहीं बढ़ते, अब हम उस पर जाए लफाजी में जाना नहीं चाहते, सरकार की लफाजी और जुमले उनकी बात हम नहीं करना चाहते, लेकिन अब सोचने की बात है। अगर हमें देश में रोजगार बढ़ाना है तो वो एक दिन नहीं बढ़ता, उसके लिए हमें प्लान करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है हम कैसे रोजगार बढ़ाएं। पहली बात तो यह है कि रोजगार पर निर्भरता अपने आप में ख़त्म करनी चाहिए, उद्यम को देना चाहिए सपोर्ट, उद्यम को सपोर्ट देने के लिए लोगों में उद्यम की मानसिकता आनी चाहिए। वो मानसिकता जो है सिर्फ भाषण देने से नहीं आती। एक बार एक महान मुख्यमंत्री ने हमसे कहा कि भाई हमने आज 3 लाख अध्यापकों को भाषण दिया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है अब तो उन अध्यापकों को सीखने की जरूरत है ही नहीं, आपने भाषण दे दिया, आप तो मुख्यमंत्री हैं। अब वो फिर भी वो बात समझे नहीं हमारी। अध्यापकों को अध्यापक बना रहने देने के लिए हर महीने एक दिन चाहिए, उनको ट्रेनिंग चाहिए, उनको अच्छी तरह की ट्रेनिंग चाहिए, उनको भविष्य की ट्रेनिंग चाहिए, भविष्य के लिए तैयार होने का रास्ता उनको चाहिए। और एक बार मुख्यमंत्री जी ने अगर भाषण दिया उससे क्या होगा, उससे थोड़ा उनमें उत्साह बढ़ेगा और फिर उत्साह अगले दिन ठंडा हो जाएगा। उसको चलाने के लिए एक पूरा कार्यक्रम, पूरी योजना चाहिए। उसी तरह नौकरी के लिए चाहिए, बेरोजगारी के लिए चाहिए। तो बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए एक तो तरीका यह है कि सब लोग उद्यमी हों, या सब लोग अपना जो एक तो छोटे छोटे धंधे कर सकें, तब बात बनती है। वो धंधे कैसे बनाए जाए उसके लिए पूरा एक व्यवस्था होनी चाहिए, लोग को समझाए। जैसे मैं गया मिजवान फूलपुर बनारस के आसपास जगह है, वह कैफी आजमी के नाम पे एक स्कूल चल रहा है, वहाँ पर उन्होंने एक रोज़गार ढाबा बनाया। उस रोज़गार ढाबे में उन्होंने पिछले एक दो साल में तमाम लोगों इतनी सुविधाएं, जो सरकार की सुविधाएं हैं वो समझाने में लोगों को बहुत समय लगाया, उस समझाने से कई लोगों को काफ़ी फायदा हुआ। यानी कि सरकार के पास जो आज की तारीख में जो सुविधाएं हैं उन्होंने दे रखी हैं लोगों को, जो स्कीम बनाई हैं उसको समझाने वाला कोई नहीं है, उसको आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। तो मेरा मानना है कि आज की तारीख में जबकि हमारी परंपरा रही है कि हम बजट 100 करते हैं, खर्च 80 करते हैं, हमेशा 20 जो है फिर कम आ जाते हैं, फिर अगला बजट बढ़ता है 110 होता है, फिर उसमें 20% कम खर्च होता है। ये जो खर्च कम होता है वो उससे हमारे यहाँ बेरोजगारी पे असर पड़ता है, बढ़ जाते हैं, रोजगार कम पैदा होते हैं। नंबर एक, अगर उन्हीं सारी स्कीमों में 100% खर्च किया जाता तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते थे। एक उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी जो भी स्कीम बनाए, जो बजट बनाए उसको पूरी तरह खर्च करने का, और ऐसा नहीं कि अंत में सिर्फ मार्च महीने में सारा खर्च कर दिया। जब एकाएक ऐसा खर्च करते हैं तो खर्च का एक अनर्गल खर्च हो जाता है, उससे फ़ायदा नहीं होता, उससे अनाप शनाप चीज़ें हो जाती हैं। तो या तो हमें, अगर हम प्लान करते हैं ठीक से, उस प्लान को कार्यान्वित करने के लिए जो एक तरीका निकालना चाहिए वो भी निकालना पड़ेगा। हमारी व्यवस्था में आज की तारीख में ढांचा हो सकता है लेकिन उस ढांचे पे, उस हड्डियों पे जो मांस नहीं अभी तक जमा हुआ है, तो यानी कि वो जो है एक ढांचा दिख सकता है आपको लेकिन वो कार्यशील ढांचा नहीं है, और अगर है तो वो बहुत अपनी जिसकी ज़रूरत है उससे बहुत कम पे काम कर रहा है। तो सब मिला के जो है आज की तारीख में हमारे पास न कोई योजना है रोजगार बढ़ाने की, न उद्योगों को बढ़ाने की, जो है वो अधकचरी है, उसमें जान नहीं है, और जो अधकचरी है उस पर भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अंत में ये होता है कि जो हमारी क्षमता है करने की, जो हमारी लालसा है करने की, जो हम करना चाहते हैं, उन सब का एक छोटा प्रतिशत काम होता है और अंत में हमारी अर्थव्यवस्था चरमराता चलती चली जा रही है। जो 2004 से 2014 तक जो तरक्की हुई वो अपने अलग तरह की तरक्की थी। तो दुनिया कहती थी कैसे भारत 9 से 10% में जाने वाला है, 9 से 10% ही ग्रोथ कैसे होगी वहाँ की। अब क्या हो गया है, अब हमारी ग्रोथ 3-4-5-6% रह के चली गई है। अगर हम 8% चले भी गए, पहले अगर $2500 billion थे, अब 2000 पे हैं, 8% हुआ भी तो 6% इफेक्टिवली हो जाता है। 6% पे हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, 8% पे काफ़ी कुछ कर सकते हैं, 10% पे हमारी रफ्तार ऐसी होगी कि हम गरीबी रेखा को नीचे लाते जाएं। तो ये सब कुछ बदलाव हो रहे हैं, सुना नीति आयोग में हमारे मित्र राजीव छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे पूरे पुराने और बुजुर्ग मित्र कोई आ रहे हैं वहाँ पे, उन सब से कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को एक कायदे से नहीं देखते, वो हमारे ढांचे में कायदे से सोचने देखने का जो है सिलसिला बन ही नहीं सकता, थोप दिया जाता है। जो हमारी सोचने की प्रक्रिया है वहाँ कुछ कहीं कुछ लचर है, कुछ गड़बड़ है। तो हमारी जो सारी जो व्यवस्था है, कुछ आने वाले समय में देखेंगे, अगर 45 करोड़ लोग बेरोजगार सोचना बंद कर दें तो उनके पास कहाँ से, उनके पास शांति नहीं आएगी, कैसे करेंगे वो, अपने परिवार के भी बोझ बनेंगे। तो सब मिला के जो है हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है कमज़ोर हो जाएगी, और उसमें एक सामाजिक असंतोष की बहुत बड़ी गुंजाइश है। अगर वो शुरू हुआ तो ब्राज़ील एक ज़माने में जिस तरह से गया, श्रीलंका, बहुत लोग हम मिलते हैं टैक्सी ड्राइवर वो बात करते हैं साहब हम भी श्रीलंका बनने वाले हैं जल्दी, ये जो भावना है उसको निकालना पड़ेगा हमें। अगर लोग इस तरह सोच रहे हैं कि हम भी श्रीलंका के रास्ते पर जा रहे हैं, ये लोग नागरिक हमारे हैं, ये लोग ये ड्राइवर हैं, इन लोगों की जो शिक्षा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की है, उनको भी आज इंटरनेट के नाम पे इतना ज्ञान हो गया है कि श्रीलंका में गड़बड़ है, और जो वहाँ दो गड़बड़ कैसी है वो कहते हैं, अरे वहाँ भी बहुत राष्ट्रीयता की बात करते थे, राष्ट्रीयता से अर्थव्यवस्था खराब होती है। ये बात अगर ड्राइवर कहना शुरू कर दे तो आपको सोचने की ज़रूरत है, इसमें ये चिंता का विषय है। और हम सोचते हैं कि हमारे नेता इस पर फौरन ध्यान देंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एकदम ठीक हो जाए। इसको ठीक करने के लिए हमें कम से कम बरस से दो बरस लगेंगे, उससे ज़्यादा समय लगेगा। इस पर सोचिए। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगली पायदान तक नमस्कार।